हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। परसों रोहन के केस की पहली हियरिंग होने वाली थी, जहां उसे कोर्ट के सामने पेश होना था। रोहन मेंटली तैयार नहीं था। उसका साथ देने के लिए वेद और शिवांशा को वहां मौजूद रहना जरूरी था। अरमान में कॉल करके वेद को इस बारे में शिवांशा को बताने के लिए कहा, ताकि वो खुद को तैयार कर सके। कुछ देर पहले डाइनिंग टेबल पर वंश की वजह से शिवांशा का मूड थोड़ा ऑफ हो चुका था। ऐसे में वेद उसे एक और बुरी खबर देकर परेशान नहीं करना चाहता था। वो उसे लॉन्ग ड्राइव का बोलकर बाहर लेकर गया और इस बारे में सब कुछ बताया। जैसा कि वेद को उम्मीद थी, पूरी बात सुनने के बाद शिवांशा रोने लगी थी और एक बार फिर से वो खुद को अंकुश के आगे लाचार महसूस कर रही थी। हालांकि वेद उसे संभालने के लिए हमेशा मौजूद था, पर फिर भी रोहन के सामने उसे भी खुद को मजबूत रखना था। लॉन्ग ड्राइव से वापस आते हुए शिवांशा गाड़ी में सो गई थी, क्योंकि वो परेशान थी और वेद से बात नहीं कर रही थी। घर पहुंचते ही वेद ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसके हाथ हवा में ही रुक गए थे। मेरी वजह से तुम्हारा आज का दिन फिर से खराब हो गया। तुमने अपनी तरफ से पहल करके डिनर बनाया था और वंश ने अनजाने में तुम्हारा मूड खराब कर दिया। बस यही वजह है कि मैं हमारे रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें समझा रहा था शिवांशा। मेरे साथ सिर्फ जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अब तक तुमने बहुत दर्द सहे हैं। काश मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं और तुम्हें वो खुशियां दे सकूं जो तुम्हें आज तक ना मिली हूं, वेद ने मन ही मन कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर शिवांशा के माथे पर बिखरे बालों को सही किया। फिर शिवांशा को जगाने के बजाय वेद ने गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद ही शिवांशा को गोद में उठाकर अंदर जाने लगा। रात काफी हो गई थी, उसके बावजूद वंश अपने कमरे में नहीं आया था। आराध्या से उसकी बहस के बाद से ही वो उससे नाराज था। जब उन्होंने बाहर से गाड़ी की आवाज सुनी, तो आराध्या और वंश दोनों एक साथ देखने के लिए सीढ़ियों के पास गए। उन्होंने देखा कि वेद शिवांशा को अपनी गोद में उठाए हुए अंदर आ रहा था। आराध्या ने वंश की तरफ देखकर हल्की घबराई आवाज में पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी की तबीयत खराब हो गई हो? देखकर लग तो नहीं रहा, इस तरह बीच में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, वंश ने जवाब दिया। वे दोनों वेद के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। अगर शिवांशा की तबीयत खराब होती तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव होते। वहीं शिवांशा नींद में कसमसाते हुए वेद के सीने में सिर छुपाए हुए थी। वेद के एक्सप्रेशंस नोटिस करने के बाद आराध्या ने वंश से कहा, नहीं सब ठीक लग रहा है, दोनों बाहर से आए हैं, शायद भाभी रास्ते में सो गई होंगी तो भाई ने उन्हें जगाया नहीं होगा। हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, जब भी हम बाहर जाते हैं तब तुम भी ऐसा ही करती हो। आज तक मैंने भी तुम्हें इस तरह नींद में नहीं जगाया है, खुद गोद में उठाकर घर लेकर आता हूं, वंश ने सिर हिलाकर कहा। आराध्या ने वंश की तरफ देखा और नाराजगी जताते हुए कहा, इतना प्यार करते हो फिर भी गुस्सा होकर कमरे में नहीं आए? हाँ क्योंकि मुझे बहस करके तुमसे लड़ाई नहीं करनी थी, तुम जानती हो मेरा मूड खराब होता है तो 2-3 दिन सही होने में लग जाते हैं, वंश ने जवाब दिया। आराध्या ने उसकी बात पर हामी भरी और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींचकर ले जाने लगी। चलो ठीक है, नहीं करती हूं तुमसे बहस, कम से कम बात करना बंद मत किया करो, आराध्या उसे अंदर ले जाते हुए बोली। वहीं वेद भी शिवांशा को लेकर अपने कमरे में आ गया था। उसने शिवांशा को काउच पर लिटाना चाहा, लेकिन ये सोचकर कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी, वेद उसे बेड की तरफ लेकर गया और फिर उसे लिटा दिया। शिवांशा को अच्छे से लिटाने के बाद वेद ने उसके फुटवेयर्स निकाले। इस बीच वेद की नजर शिवांशा के पैरों की तरफ गई, उसने बिल्कुल पतली सी एक चैन जैसी पायल पहन रखी थी। जब वेद शिवांशा को घर लेकर आया था, तब पहली रात उसकी चूड़ियों और पायल के शोर पर वेद पूरी तरह उस पर चिल्ला पड़ा था। उसने यही कहा था कि उसे शोर से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद से कभी भी शिवांशा ने हैवी पायल नहीं पहनी और ना ही हाथ में एक से ज्यादा बैंगल्स काले। शायद मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया है, सोचता हूं तो खुद पर गुस्सा आता है, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा। शिवांशा बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती थी, गले में भी बस उसने वेद का दिया हुआ ही चैन पेंडेंट पहना हुआ था। उसने शिवांशा को ब्लैंकेट उठाया और फिर खुद काउच पर जाकर सो गया था। हालांकि वेद के लिए काउच पर सोना आसान नहीं था, पर उसने खुद के कंफर्ट के बजाय शिवांशा का कंफर्ट चुना था। वहीं दूसरी तरफ जब अरमान रोहन के साथ कमरे से बाहर निकला था, तब नव्यांशी ने उसकी कुछ आखिरी बातें सुन ली थी। उसके हिसाब से नव्यांशी और मनन दोनों ही जिद्दी थे और दो जिद्दी लोग एक दूसरे को अच्छे से हैंडल कर सकते थे। नव्यांशी जब कमरे में दौड़कर आई
तो हल्का हांफ रही थी और अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वो यही जता रही थी कि नव्यांशी पूरे टाइम मनन के साथ बैठी रही। अगले ही मिनट अरमान रोहन को लेकर वहां पहुंच गया था। उसने रोहन को बिठाने में मदद की। अरमान रोहन को संभाल रहा था कि तभी मनन नव्यांशी से बोला, नव्यांशी तुम अरमान के पीछे गई थी ना, क्या बात सुनी तुमने इन दोनों की? नव्यांशी मनन को आंखें दिखा रही थी ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन वो बोले जा रहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि ये मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की। तुम बहुत बुरी हो, अपना मतलब होता है तब मेरे पास आती हो, वरना जब देखो काम करती रहती हो। मनन नव्यांशी को भला बुरा बोल जा रहा था। इस बीच अरमान रोहन को बिठाने के बाद नव्यांशी के पास आया और उसे घूर कर देखते हुए बोला, वेरी बैड नव्यांशी, तुम्हें इस तरह हमारी बातें छुपकर नहीं सुननी चाहिए। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन अरमान, नव्यांशी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने सख्त आवाज में उसे बीच में काटते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं दो बच्चों के सामने तुम्हें डांटूं? नव्यांशी ने ना में सिर हिला दिया था और वो चुपचाप अरमान के साथ बाहर आ गई थी। हालांकि अरमान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं नव्यांशी ने उनकी सारी बातें तो नहीं सुन ली थी। अगर ऐसा हुआ तो वो जान जाएगी कि रोहन के साथ क्या हुआ था और आखिर राजावत फैमिली इस तरह शिवांशा और रोहन के पीछे क्यों पड़ी है। बाहर आते ही अरमान ने नव्यांशी को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें मनन को संभालने के लिए कहा था, ये बहुत गलत बात है नव्यांशी, अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। अच्छा ठीक है, आगे से नहीं करूंगी, और मैंने तुम लोगों की ज्यादा बातें नहीं सुनी थी, बस आखिरी कुछ बातें सुन ली थी जहां तुम रोहन को उदयपुर ले जाने का कह रहे थे और साथ ही ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं मनन को संभालूं। और तुमने ये क्यों कहा कि दो जिद्दी लोग एक दूसरे को संभाल सकते हैं? मैं जिद्दी नहीं हूं, अपने भाई की तरफ देखा है, एक बात भी नहीं छुपा पाता है वो, नव्यांशी ने मुंह बनाकर कहा। वो बोले जा रही थी और अरमान खोई हुई निगाहों से उसे देख रहा था। एक पल के लिए मानो वो उसे जवाब देना भूल गया था। नव्यांशी भी हैरान थी कि अरमान थोड़ी देर पहले उस पर गुस्सा हो रहा था और अब उसकी निगाहें नरम थीं। जब नव्यांशी चुप हुई तो अरमान को होश आया। उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, आगे से ऐसा मत करना प्लीज, जब तुमने सुन ही लिया है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। मैं रोहन को शिवांशा से मिलवाने के लिए उदयपुर ले जाना चाहता हूं, मैं मनन को अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, तो क्या प्लीज तुम उसे अपने पास रख पाओगी?
अरमान काफी रिक्वेस्टिंग वे में बात कर रहा था तो नव्यांशी मना नहीं कर पाई। ऊपर से उसे मनन के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, चाहे वो बच्चों की तरह क्यों ना बर्ताव करे। नव्यांशी उसे पूरे पेशेंस के साथ संभालती थी। थैंक्स, मुझे आने में पूरा एक दिन लगेगा, तुम, अरमान हिचकिचाते हुए बोल रहा था। उसे नव्यांशी को ये कहते हुए अजीब लग रहा था कि वो उसके भाई को देखे, जबकि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं था। अरमान के चेहरे पर झिझक के भाव देखकर नव्यांशी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने अंगूठे से हल्के से सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगी, और वैसे भी वो टैबलेट लेना चाहता है। हाँ जानती हूँ, ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसके लिए अच्छा नहीं है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं उसे कैसे हैंडल करती हूँ। थैंक्स, लेकिन उसे इतना भी डिपेंडेंट मत करो, तुम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली हो, 2-3 महीने बाद जब तुम चली जाओगी तो मनन मुझसे ज़िद करेगा कि उसे तुम्हारे साथ रहना है, फिर मैं तुम्हें अपने पास हमेशा कैसे रखूँगा? अरमान ने जल्दबाजी में कहा, हालांकि अपनी आखिरी लाइन बोलने के बाद उसे थोड़ा अजीब लगा। बातचीत का रुख बदलने के लिए अरमान ने अपने कपबोर्ड में से एक कार्ड निकालकर नव्यांशी को देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाद में देख लूँगा, तुम जो भी लो उसकी पेमेंट मेरे कार्ड से कर देना। जो भी लो से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं कुछ भी ले सकती हूँ? नव्यांशी शरारती लहजे में बोली। बिल्कुल नहीं, अरमान ने तुरंत जवाब दिया, बेवजह फालतू खर्च करने के बारे में सोचना भी मत, मैं वेद सिंह चौहान नहीं हूँ, ना ही मेरे इतने बड़े बड़े कई सारे बिजनेस चलते हैं जो तुम्हें कोई लिमिटलेस कार्ड दिया है। तुमने अननेसेसरी शॉपिंग की तो मेरे लिए नेक्स्ट मंथ हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, मनन की दवाइयाँ, रोहन की मेडिसिंस और साइकेट्रिस्ट का खर्चा और बाकी सब चीज़ें मेरी 2-3 फ्रीलांसिंग की जॉब से नहीं संभल सकती हैं। नव्यांशी ने हल्का मुस्कराकर हाँ में सिर हिला दिया था। ऐसा नहीं था कि राजावत फैमिली अमीर नहीं थी या उन्हें किसी तरह से पैसों की कमी थी, लेकिन अरमान अलग था। उसने अपने फैमिली बिजनेस को संभालने या किसी भी तरह से उनकी मदद लेने के बजाय नौकरी करना चुना। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मनन की तबीयत के चलते अरमान एक फुल टाइम जॉब भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने फ्रीलांसिंग पर काम करने का सोचा। उसके खर्च और बाकी चीज़ें आराम से हैंडल हो रही थीं, तो उसने कभी भी कोई बड़ी जॉब या किसी से हेल्प लेने के बारे में नहीं सोचा था। अरमान बाकी राजावत फैमिली से बिल्कुल अलग था। नव्यांशी अच्छे से जानती थी कि अगर मनन अंकुश का भाई होता तो अब तक वो किसी पागलखाने में होता या फिर उसकी हालत घर पर भी इससे बदतर होती। पर अरमान बिना किसी सहारे के उसे अकेले संभाल रहा था, उससे प्यार करता था,
अपनी फैमिली के गलत कामों और गलत बर्ताव के खिलाफ खड़ा रहता था। उसमें काफी सारी खूबियां थी और यही नव्यांशी को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। नव्यांशी ने गहली सांस ली और कार्ड को वापस अरमान को थमाते हुए बोली, अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो मनन की शॉपिंग और बाकी चीजें मैं हैंडल कर लूंगी। और वन मोर थिंग, वेद सिंह चौहान की बहन होने का ताना मत मारो। भाई ने कभी हमें बेवजह का खर्च करने या फिर पैसे उड़ाने के लिए लिमिटलेस कार्ड नहीं दिए हैं। अगर वो हमारे फ्यूचर और बाकी चीजों को लेकर इतने केयरलेस होते तो मैं यहाँ पर बैठकर अपने बिजनेस की प्लानिंग नहीं कर रही होती। हमें चौहान अंपायर्स में भी काम लेने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है। अरमान ने उसकी बात पर हामी भरी और बोला, फिर भी रख लो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मनन के लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लाओगी। अरमान ने वापस कार्ड नव्यांशी को थमा दिया था। नव्यांशी उसे मना करके उसकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। नव्यांशी ने अपने कदम दरवाजे पर रखे ही थे कि पीछे से अरमान ने तेज आवाज में कहा, और अपने लिए भी मेरी तरफ से कुछ ले लेना प्लीज। नव्यांशी ने पलटकर उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चली गई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। नव्यांशी के जाते ही अरमान के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। वो बोला, फिर ये कहती है कि ये मनन की तरह नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह प्यार से हर चीज समझानी पड़ती है। रात काफी हो गई थी, इस वजह से अरमान सोने चला गया था, तो वहीं जेल में अंकुश के पास केस हियरिंग और बीच रास्ते में भगाने की सारी प्लानिंग की खबर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अंकुश को सब पता चला, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो बोला, अब मैं देखता हूं कि तुम मुझसे बचकर कहां जाती हो शिरोनशाह, खुद वेद सिंह चौहान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अंकुश पूरी तरह से तैयार था वेद का सामना करने के लिए, और साथ ही इस बार वो उसे पूरी टक्कर भी देने वाला था। उसके लिए आने वाले 24 घंटे बिताने मुश्किल हो रहे थे जब वो शिवांशा को इतने टाइम बाद देखने वाला था। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए उस डर को बहुत मिस किया लिटिल गर्ल, लेकिन अब और नहीं, बस कुछ घंटे की बात है और फिर तुम अपनी असली जगह पर होने वाली हो, वही आंखों में डर लिए और दया की भीख मांगते हुए, लेकिन इस बार मैं तुम पर रहम नहीं करने वाला हूं, अंकुश ने सर्द आवाज में कहा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आजकल आपका रिस्पॉन्स बहुत ठंडा होता जा रहा है। मुझे पता है कि चैप्टर में कुछ खास सस्पेंस टाइप होने के बजाय वेद और शिवांशा के हिस्से ज्यादा लिख रही हूँ। मुझे उनके रिश्ते को ग्रो करते हुए और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, तो आप समझ सकते हो। चलिए, पढ़कर समीक्षा करके जाइएगा।